نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، دیکھو جو ذکر کرتے ہیں تسبیح پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا و ما فیہا سے بڑی نعمت ہے. بہت بڑا ثواب ملتا ہے اس پر، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی بھی عمل کے فائدے دو ہوتے ہیں، دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ثواب ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روحانیت بڑھتی ہے. تو زبانی ذکر کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے، لیکن روحانیت نہیں بڑھتی، دل نہیں بنتا. تو دل نہیں بنتا تو موت کے وقت دو پاسبلٹی ہے، اللہ فضل فرما دے تو نکل جاوے گا، اور نہیں تو پھر ایمان کھو دے گا. تو صرف زبان ذکر کرتے رہیں گے ہم تو یہ یقین نہیں ہوگا حسن خاتمہ، لیکن اگر ذکر قلبی پر ہم آ جائیں، یعنی ذکر پر محنت کر کے ہمارا دل دماغ ذکر میں آ جائے، تو جب یہ دھیان والا ذکر آ جاتا ہے تو دل کو فائدہ پہنچتا ہے، اور دل کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ دل دھیرے 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 روحانیت میں ترقی کر کے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان لاکھ کوشش کرے گا ایمان سلب نہیں کر سکے گا. میری بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگوں کی تربیت کے لیے منتخب فرمایا. یہ سب ان سے جا کر کے بیعت ہوئے، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ان کے پاس جانا چاہیے. اور پھر اس وقت دنیا میں جو کچھ خیر نظر آتی ہے وہ آگے ان حضرات سے پھیلی ہے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فیض منتقل ہوا ان لوگوں میں، اور آگے جو ہے علمی، حدیثی، تفسیری جو بھی خدمت نظر آتی ہے وہ جا کر کے ان چار میں رکتی ہے. ان کے مریدوں نے، ان کے مریدوں کے مریدوں نے، اسی طرح باطن کا جو علم ہے، تصوف کا، تزکیہ کا، روحانیت کا، اور اس کا جو پوری دنیا میں چرچا رہا اور ابھی بھی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ بھی ان چاروں تک جا کر کے رکتا ہے. دعوت و تبلیغ کا جو پوری دنیا میں فیض ہے وہ بھی وہیں جا کر کے رکتا ہے. اسی لیے یہ پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو اہل حق کے تین کام کر رہے ہیں، تعلیم کا، تزکیہ کا اور تبلیغ کا، یہ فیض آیا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، उनको इसी वजह से आलिम नहीं थे मगर फिर भी सैयदु ताइफा कहा जाता है कि ये हक परस्त जमात के सरदार। तो हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे मौलाना सादिकुल यकीन साहिब, वो हिंदुस्तान के सबसे सफ़र करके मक्का मुकर्रमा अपने शेख की सोहबत में वक्त गुजारने के लिए गए हाजी साहिब के पास। अब एक तो है कि अपने शेख के पास थाना भवन चला जाए, अपने शेख के पास सहारनपुर चला जाए, अपने शेख के पास किसी भी शहर में चला जाए और मक्का मुकर्रमा में, तो बहुत आसान हो जाता है। तो हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ मुद्दत के बाद फरमाया कि मौलवी सादिकुल यकीन, तुमने भी बहुत मेहनत की और बंदे से भी जो कुछ हो सका वो किया, लेकिन नफा नहीं हुआ। उमरा कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, हरम शरीफ में 1,00,000 का सवाब मिलता है, वो नमाज पढ़ रहे हैं, फिर हरम के इहाते में जो भी नेकी होती है वो 1,00,000 के बराबर होती है। सुभानअल्लाह 1 मरतबा पढ़ो तो 1,00,000 के बराबर, गौर से सुनना। तो हिंदुस्तान में वो सवाब नहीं मिलता था जो यहाँ, लेकिन फिर भी हाजी साहब ने क्या फरमाया कि तुमने बहुत मेहनत की और बंदे से जो कुछ हो सका वो उसने किया, कमी नहीं छोड़ी मैंने भी, लेकिन नफा नहीं हुआ। ये हाजी साहब बहुत बड़े आदमी हैं, मुहक्किक। तो नफा नहीं हुआ का क्या माना, सवाब नहीं मिला? नहीं, सवाब तो बहुत मिला, रूहानी तरक्की नहीं हुई, ये नफा नहीं हुआ। तो जब भी हम कोई अमल करते हैं तो उसमें 2 नफे होते हैं, एक सवाब और दूसरा रूहानी तरक्की। भाई मेरे साथ हो गया, नहीं, एक सवाब और दूसरी रूहानी तरक्की। कभी कभी दोनों हो जाता है, कभी कभी एक ही होता है, सिर्फ सवाब मिलता है। तो सिर्फ फजीलतों को देखकर, सवाब 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 को देखकर हम चलते रहेंगे और रूहानी नफा हो रहा है या नहीं उसका ख्याल नहीं करेंगे तो ऐसा शख्स मौत के वक़्त ख़तरे में है। मैं पूरे शऊर और होश के साथ बात कर रहा हूँ, जज्बाती तकरीर नहीं। इसलिए इसको बनाने की ज़रूरत है, इसको बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें तौफीक दे। रूहानियत में कोई तरक्की हो रही है कि नहीं, ईमान मजबूत हो रहा है या नहीं, यकीन मजबूत हो रहा है या नहीं, बुख़्ल की जड़ कट रही है कि नहीं, हुब्बे जाह की जड़ कट रही है कि नहीं, तवक्कुल पैदा हुआ कि नहीं, तफवीज़ आई कि नहीं, रिजा आई कि नहीं, तस्लीम आई कि नहीं। हम तो इन अल्फाज का माना भी नहीं जानते तो पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें आई कि नहीं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये फ़र्ज़ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। भाई सीखने की कोशिश नहीं करते ना। दीन का मामला हमारा कैसा है कि हर शख्स ऐसा सोचता है कि मैं दीनदार हूं, चल रहा है ठीक है। तो सिर्फ सवाब नहीं, रूहानियत, रूहानियत अंदर बीमारी है। फिर देखो कैसी तकरीर कर रहे हैं आज, बिल्कुल ढीले ढाले हैं कि नहीं। इन्होंने भी तालीम बिल्कुल ढीले ढाले अंदाज में आज की, कुव्वत नहीं। अंदर बीमारी हो जाहिर में कितना ही तंदुरुस्त लगे, उसका आउटपुट सही नहीं होता। अमल तो होगा, आपको नजर आ रहा है कि बयान हो रहा है, नसीहत हो रही है, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। अंदर अगर रूहानी बीमारियां हैं तो नमाज का वजूद होगा, मगर अल्लाह जैसी नमाज देखना चाहते हैं वैसी नहीं होगी। तिलावत भी होगी, रोज़ा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से बीमार है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। बीमार आदमी, सर में दर्द है, सीने में दर्द है, खांसी है, तो सब कहेंगे कि आज सबक पढ़ाया, लेकिन वैसा सबक नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तफहीम में फ़र्क आ जाएगा, तकरीर में फ़र्क आ जाएगा, तो एक है अमल का वजूद और दूसरा है अमल का कबूल। अमल के वजूद से अल्लाह न दुनिया के फैसले बदलते हैं न आखिरत के, अमल के कबूल से अल्लाह दुनिया में भी तकदीर को बदलते हैं और आखिरत में भी फैसले बदलते हैं। अभी मौलाना मरहूब साहिब वगैरह तशरीफ लाए थे बाटली के उलमा मिलने के लिए, यही बात हो रही थी। तीस लाख हाजी, कितने? 30 लाख हाजी अरफा में जाकर उम्मत की फलाह और बहबूदी के लिए हर साल दुआ करते हैं। क्या वजह है कि दुआ कबूल नहीं हो रही? रमजान मुबारक में खत्म कुरान के बाद हर दुआ करने वाला कहता है कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इज्जत अता फरमा, नुसरत अता फरमा। हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि दीन का वजूद है, दीन का कबूल नहीं है। वजूद है, कबूल नहीं। बस यही बात करके अब ख़त्म कर रहा हूँ। मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, ज़ुबानी ज़िक्र भी बहुत बड़ी चीज़ है, उससे अंबार नेकियों का, नेकियों का अंबार। लेकिन नेकियों के अंबार से कुछ नहीं होता जब तक के हाकिम के साथ वफादारी न हो। दुनिया में भी जब बगावत नजर आती है तो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। इन बातों को समझने की जरूरत है। आराम से बैठे रहे कि फजर की नमाज का सवाब मिल गया, जोहर की नमाज का सवाब मिल गया, असर की नमाज का सवाब मिल गया, तिलावत का सवाब मिल गया, उम्रे का सवाब मिल गया, ये सारे सवाब मिल रहे हैं, लेकिन बातिन की इस्लाह की फिक्र नहीं की और ये दिल कमज़ोर रहा तो मौत के वक़्त ईमान सल्ब होगा और ये सारा सवाब फ्रीज हो जाएगा। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये सवाब काम तब आएगा जबकि ये ठीक हो और ये जन्नत में जाए। जो बागी होता है उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, जो हुकूमत का वफादार होता है उसके अकाउंट से उसको नफा पहुंचता है। इसलिए सब अज़्म कर लो कि इंशाल्लाह हम जिक्र पर मेहनत करेंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अभी मस्जिद नबी में हमने नमाज पढ़ी, तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी तो वहाँ के इमाम साहिब शेख सुबई थी, उन्होंने तज़किया पर बयान किया जुमा के खुतबे में। तज़किया पर बयान किया, और तज़किया के लिए और दिल को साफ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वही बातें कही जो हमारे देवबंदी उलमा कहते हैं, जो हमारे मशाइख कहते हैं। अच्छी सोहबत चाहिए, ज़िक्रुल्लाह का एहतिमाम चाहिए, बुरे जगह से बचना चाहिए, बुरी सोहबत से बचना चाहिए, वही सारी बातें। भाई क्यों? इसलिए कि वो भी कुरान और हदीस से बोलते हैं और हमारे अकाबिर भी कुरान और हदीस से बोलते हैं। दिल को साफ करना, दिल को मजबूत बनाना, दिल को हेल्थी बनाना, उसके लिए अव्वल चीज जिसकी जरूरत है वो है जिक्रुल्लाह, कसरत जिक्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ये जो कहा कि अल्लाह ने कहा कि बहुत जिक्र करो, बहुत जिक्र करो, ये इसीलिए कहा कि उसमें अल्लाह का फायदा नहीं हमारा फायदा है। तो जो बुनियादी चीज थी उसको बहुत ज्यादा करने के लिए कहा, और कितना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो कि जुबान से वो उतर जावे दिल तक, और दिल तक उतर जावे, दिल में उसकी याद रहे। हमारे एक अजीज हैं, अजीज तो क्या, उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं, ताल्लुक है हमसे उनका इस्लाह का भी, तो उनको हार्ट अटैक हुआ और बेहोश हो गए, अटैक हुआ बहुत जोर का, बेहोश हो गए और खतरे की घंटी बजी। हमें यहाँ पता चला, दुआओं का एहतिमाम किया और अव्वल फुर्सत में हम गए उनके शहर में उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में। तो मैंने उनसे कहा कि आपके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। हमारे हाफिज इस्माइल कोया साहिब, जब से मैं यहाँ आया और ये काम शुरू किया उस वक़्त से मेरे साथ हर साल रमज़ान में एतिकाफ में बैठते हैं। ये मेरे हजरत के मुरीद थे, लुधियानवी रहिमहुल्लाह ताला, और हजरत लुधियानवी रहिमहुल्लाह ताला ने उनको बैत किया था मेरी सिफारिश पर। इन्होंने मुझे कहा कि हजरत से कहो ना मुझे बैत फरमाने, तो मैं ले कर भी गया, तो हजरत ने मुझसे फरमाया कि तुम बैत करो, तुमको इजाजत दी है किस काम की। तो मैंने बहरहाल किसी तरह हजरत को मना लिया, बोले तो आप ही कर लीजिए। तो हजरत ने उनको बैत किया, उस वक्त मेरा कोई मुरीद नहीं था, तो उनको बैत करके हजरत ने फरमाया कि बैत तो मैंने कर लिया मगर अब आगे चला हुआ आप, इस एतबार से वो मेरे सबसे पहले मुरीद है। हजरत ने फरमाया कि आप इनको आगे चलाओ, रहनुमाई अब आप कीजिए। और उसके 6-7 महीने के बाद हजरत का इंतकाल हो गया। फिर इन्होंने मुझसे ताल्लुक जोड़ा हबी साहिब ने, और मैं जवान था बिल्कुल उस वक़्त, ये उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े, तो ये मेरे पास मौतकफ़ में आए। हमें तो वहमो गुमान में भी नहीं था उस वक़्त कि ये भी मुझे कभी कह सकते हैं कि मुझे बैत कर लो। मैंने कहा बैत कर लो आप, तो मैंने कहा कि ना, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बैत हो जाओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि कर लो ना आप, मैंने कहा कि ना। उनको कुछ खिलाया पिलाया मौतकफ़ में, फिर कहा कि मुझे बैत कर लो ना आप, मैं तो वजू करके आया हुआ हूँ। मैंने कहा ना बैत तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भी ये तय करके आया हूँ कि इस मौतकफ़ से निकलूँगा ही नहीं जब तक कि तुम बैत ना कर लो, और बैठे रहे 2-3 घंटे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनको स्ट्रोक हुआ, और स्ट्रोक होने के बाद वो कई महीने उनके हो गए, रमज़ान से स्ट्रोक हुआ है, तो बोल नहीं सकते, तकलीफ़ में है। अल्लाह उनको खूब शिफा अता फरमाए, बरकत दे। तो इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं ना, उनके चेहरे फीके पड़ जाते हैं, चेहरों पर रौनक नहीं रहती, लेकिन हाफिज साहब को जाकर के आप देखो, इतना सुकून, इतनी तमानीनत, और चेहरा चलते फिरते थे उससे ज्यादा अभी मुनव्वर है। हमारे हाजी यूसुफ साहब के पास जाकर के देखो, 2-3 सालों से एक ही कमरे में बंद है, वो माजूर हो गए। वो भी ये हाफिज साहब वगैरह ये सब मेरे शुरू के 10-15 हम एहतिकाफ में बैठते थे, बरकत है हमारे इब्राहिम भाई, ये सब शुरू के लोग, सैयद साहब अंबाला वाले सैयद साहब। तो ऐसे लोग तो ये बिल्कुल मुरझा जाते हैं बिस्तर में बैठ बैठ के। तो हाजी साहब मुझे कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर तो बहुत फजल कर दिया। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि बस पहले निकलते थे, इससे मिलते थे, उससे मिलते थे, अब एक कमरे में बैठ गए, यहाँ कोई आता ही नहीं, तो अल्लाह के साथ जिक्र करने में और बात करने में बहुत मजा आता है। और उनके घर वाले ये कहते हैं कि इनके कमरे में भी जाते हैं और कुछ थोड़ा भी ज्यादा बैठते हैं तो कहते हैं कि अब तुम जाओ, मुझे रहने दो। ऐसा आदमी तो इंतजार करता है, लोगों को बुलाता है। ये जिक्र जो है वो अंदर रच बस गया है। हमारे हबीब इस्माइल कोया साहिब पर भी जो सुकून और तमानीनत नजर आती है वो ये कि जुबान उनकी बंद हो गई है, मगर मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उनका दिल दिमाग अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। समझते भी है, लेकिन बेटा उनका कहता है कि कभी शिकायत नहीं, कभी शिकवा नहीं, कभी ऊ आ कुछ नहीं, चेहरे के ऊपर यूं बिल्कुल। तो वो मेरे कहने लगे मुझे, मैंने कहा आपके चेहरे पर तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। फिर मुझे वो कहने लगे कि पहले मौत से डर लगा करता था, लेकिन मुझे जब अटैक हुआ और ज़ाहिरी जिस्म मेरा मफलूज हो गया, आंखें मफलूज, कान मफलूज, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आंखें काम नहीं कर रही है, तो कहा कि अटैक से लेकर मैं दोबारा होश में आया उस वक़्त तक मेरा दिल मुसलसल जिक्र में रहा, तो कहा मुझे अब मौत से डर नहीं है। मौलाना यहिया मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने आपको कहा था पहले, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, हरमैन शरीफ़ैन में मेरी उनसे मुलाकात रही है और शफकत फरमाई है, और हमारे यहाँ उनके मदरसे से सुलूक व एहसान का जो पर्चा आता है वो हजरत ने मुझे से कहा था कि तुम मुझे एड्रेस दो, मुफ्त में आता है इतने सालों से। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मुकर्रब लोगों में से वहाँ क़याम किया था, इसीलिए उन्होंने यहिया मदनी कहते हैं। माहदुश शेख ज़करिया उनका मदरसा है कराची में, तालीम तरबियत के एतबार से बहुत फाइक समझा जाता है। तो कोमा में चले गए, डॉक्टर हजरत बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर हजरत जो हैं उनको मेरी बातों पर एतमाद है, दीनी जहन के हैं इसलिए मेरी बात मान लेते हैं, लेकिन ये अपने मेडिसिन के हिसाब से सोचते होंगे तो ये बिल्कुल सब उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो जिस हॉस्पिटल में उनको दाखिल किया गया था वहां जो कंसल्टेंट था वो उनका मुरीद था, ये सुनी सुनाई हुई बात नहीं है, उनके इंतकाल के बाद सुलूक व एहसान में ये बात छपी तो मैंने खुद पढ़ी है। तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं डॉक्टर, तो वो कोमा में जब चले गए तो स्टेथोस्कोप रख करके उन्होंने जरा हार्ट और इसका जायजा लिया। तो जब दिल के ऊपर स्टेथोस्कोप रखा तो साफ आवाज आ रही थी, अल्लाह 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 मुसलसल। इनके जहन में ऐसा ख्याल आया कि मैं हजरत का मुरीद हूं और मुझे हजरत से अकीदत है, तो शायद ये धड़कन जो है वो मुझे ऐसी सुनाई दे रही है। मेरा तो पहले से जहन है कि हजरत का दिल अल्लाह अल्लाह करता है, तो शायद मेरा वहम है। तो उन्होंने अपने एक कॉलीग को बुलाया, दूसरे डॉक्टर को, जो इस किस्म की चीजों को मानता नहीं था, आजाद लिबरल जहन का, और कहा कि मैंने तो चेक किया है, मगर आप भी मेरे हजरत को जरा चेक करें। तो उसने जब चेक किया और हार्ट के ऊपर उसने जब स्टेथोस्कोप रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो पहले वाले डॉक्टर ने कहा कि खैरियत तो है कि, तो कहा कि मैं हैरान हूं कि इस शख्स के दिल से तो अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है, और जितने दिन तक वो कोमा में रहे उनके दिल की कैफियत यही रही मौत तक। तुम्हें मेहनत कर लो, ये तय करो कि हमें दिल को जाकिर बनाना है, और इसमें किसी हया शर्म ये सब चीज़ें माने नहीं बननी चाहिए। अपनी आखिरत को सामने रख कर के कदम उठाओ। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हया वाला आदमी, हया और तकब्बुर वाला आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता। तो हम ये कहते हैं कि हया वाला आदमी और तकब्बुर वाला आदमी रूहानियत में भी तरक्की नहीं कर सकता। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना कासिम नौनदवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये सोचा करते कि हम बड़े साहिब इल्म आदमी हैं, हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह तो आलिम भी नहीं है, तो काम कैसे बनता। मैं जब किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो ये देख कर जाता हूँ कि आलिम है या नहीं। मेरे जो डॉक्टर हैं वो आलिम नहीं है, मैं ये देख करके जाता हूँ कि इस लाइन की एक्सपर्टीज उसके पास है या नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो छोटे बड़े अपने पराए कुछ मत देखो, ये देखो अपने दिल को साफ सुथरा बनाने के लिए जिस एक्सपर्टीज की मैं तलाश में हूँ वो कहाँ है। अब एक बात कह करके ख़त्म करता हूँ। हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जिनको पूरे हलके की तरबियत के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया था, तो उनके लिए भी तो जोरदार शेख मुंतखब किया होगा। जाहिर हजी साहब को जो बनाना था, तो वो बहुत ऊंचे पाए के शेख थे, हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह जंजाना में रहते थे। कितना ऊंचा मकाम था। हजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह बार बार ढूंढ रहे थे कि मुझे कोई अच्छा शेख मिल जाए। तो इसी फिक्र में रात को ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हैं और कोई शख्स है बड़े बुजुर्ग शक्ल के, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इमदादुल्ला तुम्हें जो कुछ जिस चीज़ की तलाश है तुमको इनसे मिलेगी। लेकिन ये कि ये पूछें कि ये कहाँ रहते हैं, इनका नाम क्या है, उससे पहले आँख खुल गई। अब बहुत बेकरार कि ओह ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई, मगर नाकिस रहा तौबा इस्तिग़फ़ार कि मेरे गुनाहों की कोई नहूसत होगी। बहरहाल उस ख्वाब की बरकत ये हुई कि किसी ने आकर उनको इत्तला की कि लुहारी एक जगह है, कि लुहारी में एक बुज़ुर्ग रहते हैं। तो ये जहाँ कहीं सुनते थे तो चले जाते थे, लेकिन दिल में इंशरा नहीं होता था। ये लुहारी गए, सफ़र किया लुहारी का। हजरत हाजी साहब खुद फरमाते थे कि जैसे जैसे मैं लुहारी के करीब होते गया, पहली मरतबा मेरी हालत ये थी कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ती गई, हालांकि मुलाकात पहले हुई नहीं थी। जा कर के पूछा कि भाई यहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं मियाँ जी नूर मोहम्मद साहिब, तो कहा कि हाँ ये मकतब में बच्चों को पढ़ाते हैं अलिफ बा ता सा से कुरान तक। उस वक्त हदी साहब अगर ये सोचते कि ओह ये तो मकतब का कोई छोटा सा मियाँ जी है, वो मियाँ जी इसीलिए कहते हैं कि यूपी के इलाके में मकतब में पढ़ाने वाले को मियाँ जी कहते हैं। और वापस चले जाते हैं। लेकिन नहीं, कहा कि हम तो तलब में आए हैं, देखना चाहिए, आदमी को देखना है, उसकी एक्सपर्टीज को देखना है। चलते चलते पहुंचे और इत्तेफाक से दोनों आमने सामने हो गए। मियाँ जी साहिब मकतब से निकल रहे थे, ये वहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में आमने सामने हो गई। जैसे ही नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये तो वही साहिब है जो मुझे ख्वाब में दिखाए गए थे। तो कैफियत ये हो गई कि हाजी साहिब फरमाते हैं कि मेरे पैर मुझे उठा नहीं सके और मैं घुटनों के बल गिर गया हजरत के सामने। अब हजरत को तो कुछ पता नहीं कि आया कौन है, लेकिन जैसे हमारी जाहिरी दुनिया में इंतजाम होता है ना कि मैं डॉक्टर शेख साहिब या डॉक्टर बदर साहिब के पास या डॉक्टर यूसुफ साहिब के पास किसी को भेजूं तो मैं फ़ोन करके कहूंगा ना कि मेरा ख़ास आदमी है ज़रा आप ख्याल कीजिए। तो चूँकि अक्ल से सोचते हैं इसलिए बातिन की दुनिया की ये सब चीज़ें हमें यकीन नहीं आता। उनको ख्वाब में दिखाया गया, इतना अहतमाम हुआ कि ये है तुम्हारे शेख, और भेजा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में। तो इधर हुआ है तो उधर भी तो कुछ हुआ होगा। तो सामने ये गिरे, देखा कि ये कौन है, तो मियाँ जी नूर मोहम्मद साहिब झुके और झुक करके यहाँ बगल में हाथ रखे और हाथ रख करके उनको उठाया और उठा करके कहा कि फिक्र मत करो, जिस चीज़ की तलब में तुम आए हो वो चीज़ तुमको मिल जाएगी। और अव्वल वहले में अकीदत हो गई, मोहब्बत हो गई और बैत हो गई। और फिर ऐसा फैज़ पहुँचा कि हाजी साहिब और हाजी साहब का आगे फैज़। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बहुत ज़्यादा सोचते नहीं रहना चाहिए, ये शैतान की चाल होती है, करेंगे 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 नहीं। जो मुरीद हो चुके हैं किसी से आगे बढ़ो, जिस शख्स से आपका ताल्लुक़ है आगे बढ़ो, जो मुरीद नहीं है उन्हें फिक्र करनी चाहिए इस सिलसिले की, और फिक्र करके अपनी बातिन की इस्लाह के। कोई घबराने की कोई चीज़ नहीं है, जो आप अभी कर रहे हैं वही करना है, अभी जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं वही फ़र्ज़, अभी जो वाजिब हैं वही वाजिब, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी आप कोशिश कर रहे हैं बगैर किसी सपोर्ट के, और बाद में आपको सपोर्ट के साथ ही काम मिलेगा। शेख का सपोर्ट, ज़िक्र का सपोर्ट, ज़िक्र भी तलकीन किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि आँख बंद करके, हर आदमी का अलग अलग ज़िक्र होता है, देख करके आपकी क्या मशगूली है, आपकी क्या मशगूली है, आपकी क्या मशगूली है। तो भाई आज इरादा कर लो कि इंशाल्लाह ज़ुबान पर ज़िक्र रहेगा और ये ज़ुबान से ज़िक्र फिर दिल पर आएगा। तो इसमें तो दो ही ज़िक्र है, ज़िक्र लिसानी, और जब दिल में उतर जाए तो उसको कहते हैं ज़िक्र कल्बी। और फिर ज़िक्र कल्बी जब हो जाता है तो ये दिल जब मुनव्वर हो जाता है ज़िक्र से, तो पूरे जिस्म में वो ज़िक्र फैलता है, और जब ज़िक्र जिस्म में फैल जाता है तो जिस वक्त जिस हालत में जो काम करना चाहिए वही होता है, इसको कहते हैं ज़िक्र हाली। ज़िक्र हाली, जिस हालत में अल्लाह को जो काम पसंद होता है वही काम करता है। और ये ज़िक्र इतना फैल जाता है कि एक ही वक्त में अगर तीन अच्छे कामों की चॉइस होती है तो तो जिसमें जिक्र हल ही नहीं है वो ये फैसला नहीं कर सकेगा कि मेरी आखिरत के एतबार से तीनों में से किस में मुझे मशगूल होना चाहिए। तिलावत का भी ख्याल आ रहा है, दुआ का भी ख्याल आ रहा है, नफल का भी ख्याल आ रहा है, मैं क्या करूँ। जिसको जिक्र हल ही नसीब हो जाता है उसे ये पता चलता है कि इन तीनों में से मुझे इस वक्त कौन सा करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप सब दोस्तों को भी तौफीक दे। गुफ्तगू करने का तो आज बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन ये एक तरफ रह गई फिर और पौन घंटे का बयान हो गया। अल्लाह ताला शानु हमारी मदद फरमाए, तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए और इस पर खूब चलाए। देखो भाई, मजलिस में अल्लाह लाता है ये भी बहुत बड़ी नेमत है, फिर मजलिस में लाने के बाद अल्लाह समझ देता है, हमसे कोई काम की बात कहलवाता है, आप हजरात के दिलों को लगती है, ये बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान। इसका मतलब ये कि अल्लाह मेरे और आपके साथ खैर चाहते हैं, भलाई देना चाहते हैं। अब बस इतना करना है हमें कि जो बात दिल को लगे उसे आगे लेकर के चलो, आगे बढ़ाओ इसको। और जब जिंदगी इंसान की बन जाती है, जिक्र हाल ही आ जाता है, तो फिर उसका वजूद जो है, पूरा वजूद, वो दावत बन जाता है। जुबान से नहीं बोलेगा, सिर्फ उसके जिस्म को, उसके अमल को देखकर, उसकी सोहबत में बैठकर लोग दीन पर आएंगे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचे हैं इंडिया में, तो आप वहां की जुबान नहीं जानते थे, मगर जिक्र हली तक पहुंच चुके थे, इसलिए आपका वजूद दावत था। तो कितने आदमी मुसलमान हुए? अकल हैरान हो जाती है सुनते हैं तो, बगैर जुबानी दावत के सिर्फ जहां से गुजरते थे लोग कलीमा पढ़ते थे। कितने आदमी मुसलमान हुए? 90,000, 90,000 आदमी मुसलमान। तो अल्लाह ताला शानहु भाई मदद फरमावे हम सब की अपनी ज़ात पे मेहनत करने के। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين। चलो भाई तश्किल भी कर लेते हैं, इस मेहनत के लिए कौन तैयार है? हाथ खड़ा रखो और दिल दिल में अल्लाह से कहो कि ये अल्लाह आपने ही हाथ उठवाया है, बस अब जब तक हम आपके मुखलिस बंदे न बन जाए वहां तक इस हमारे हाथ को आप छोड़ना मत, और हमें अपने अवलिया में शामिल फरमा दीजिए, हमारी बीवियों को, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को, हमारे माँ बाप को, सबको ये अल्लाह विलायत का बहुत ऊंचा मकाम नसीब फरमा।